Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Yo Brahmanam Vidadhati Purvam यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः या सृष्टिसृष्टिराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे काले विधतश्रुतिविषयगुणः या स्थिता व्याप्तविश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
भगवान शिव की महिमा बड़ी अनंत अपार है। वंदे देव ममापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम् मृगधरम् वंदे पशूनाम् पतिम् वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम् वंदे मुकुंद प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयम् जवरदम् वंदे शिवम् शंकर। प्रातः नमामि पब हम किसको नमस्कार करें? जो भवभीति हरम संसार के भय को हरण करने वाले हैं। संसार का भय क्या है सबको मालूम है। सबसे बड़ा भय यही है और वो कौन दूर कर सकते हैं? कल हम बात कर रहे थे निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम। चिदाकाश बड़ा प्यारा शब्द है। चिदाकाश चित माने चैतन्य और आकाश के दो अर्थ हैं। एक तो आकाश से व्यापक की उपमा दी जाती है जो चैतन्य है और जो व्यापक है और एक आकाश काश प्रकाशने धातु है जिसे आकाश बनता है जो प्रकाशित है जो आनंद स्वरूप है। ऐसे जो चिदाकाश हैं जो सर्वव्यापक हैं और आकाशवासम आकाश ही जिनका वास है अथवा आकाश को जिन्होंने अपना वास यानी वस्त्र बना रखा है तो भगवान शंकर को क्या कहते हैं? दिगंबर। क्या कहते हैं? दिशा ही है अंबर जिनकी। तो आकाशवासम जो आकाश में रहते हैं जो स्वयं आकाश स्वरूप हैं, स्वयं आकाश स्वरूप हैं, उनको जब हम कहें कि कहां रहते हो कहां रहते हैं? तो सब जगह रहते हैं। यद्यपि जो आकाश है उसका वो आधार है, फिर भी आकाश के समान वो व्यापक है। अथवा आकाश का जिन्होंने वस्त्र बना रखा, अर्थात दिशाएं जिनके वस्त्र दिक पट धरू, दिशाएं जिनके पट हैं वस्त्र हैं, दिगंबर, बड़ा प्यारा नाम है दिगंबर। क्यों कहा दिगंबर? अंबर है ना, अंबर, अंबर माने आकाश और अंबर माने वस्त्र। तो देखो, अब दिगंबर की जब बात है तो भगवान दिगंबर क्यों हैं? क्या वो दिगंबर हैं? तो एक बहुत सुंदर बात कही, शिव के दो रूप हैं, निर्गुण सगुणश्चेति, शिवो गेयो द्विधतः। शिव के दो रूप, एक निर्गुण और एक सगुण, दो रूप है शिव के। अगले श्लोक में हम बात करेंगे क्या कहा, निर्गुण प्रकृतिरन्य सगुण सकल स्मृत। जो प्रकृति से परे हैं वे निर्गुण हैं, और जिन्होंने माया का आश्रय ले लिया वे सगुण हैं। सकल माने कला से युक्त। कौन सी कला आ गई उनमें? संसार को उत्पन्न करने की, संसार को धारण करने की और संसार का संहार करने की, ये कला उनमें आ गई। पंच कृत्य संपन्न महादेव, पांच कृत्य उनके। तो ये जो कला आई उनके अंदर, कला के आने पर वो सगुण हो गए। सतयुग में ध्यान करते थे, निर्गुण भगवान की आराधना करते थे, धीरे 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 बड़ा मुश्किल हो गया। तो भगवान की आराधना के दो रूप हमारे पास हैं, और तीसरा रूप का ध्यान नहीं होता, वो तो स्वरूपावस्थिति है, उसका नाम है निर्गुण निराकार, निर्गुण निर्विशेष, निर्गुण निर्विशेष। जो निर्गुण है और निर्विशेष है वे तो अवस्था है, लेकिन ध्यान के लिए सगुण निराकार और सगुण साकार दो रूप हैं। आप कहीं भी आप देखिए, आप भागवत पढ़िए, जिस समय परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जो व्यक्ति अभी अभी मरने जा रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य हैं? क्या करना चाहिए उसको? जो म्रियमाण है, जो मरने जा ही रहा है, उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने, यहीं से दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाता है, सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि जो म्रियमाण पुरुष है अभी मरने जा रहा है। म्रियमाण में दोनों अर्थ हैं, एक तो जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई कि इतने दिन में मरेगा, जैसे सुखदेव और परीक्षित, सॉरी, जैसे मालूम है सातवें दिन मृत्यु है, और एक जिनकी मृत्यु सन्निकट है, वृद्धावस्था आ गई, कभी भी जा सकते हैं, दो साल में, दस साल में, पांच साल में, कभी भी जा सकते हैं। तो दोनों ही म्रियमाण, क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले उसे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले घर से बाहर निकल जाना चाहिए। अब सुखदेव जी के समय तो जंगल थे, देखो इस समय समय की बात है। एक समय आप देखिए तप और त्याग ऋषियों का, एक समय जब सन्यासी बनने के लिए किसी को बनना होता था वो घर छोड़ देता था, मठ मंदिर नहीं होते थे, मठ और मंदिर पेड़ के नीचे ही उसे गर्मी सर्दी वर्षा तीनों ऋतुएं पेड़ के नीचे बितानी होती थी। कितना त्याग होगा, कितना तप होगा। तो जिस समय सुखदेव जी ने कहा, उस समय जंगल बहुत थे, और ये जो आप फल खाते ना, आम है, सेब है, संतरा है, और तमाम फल जितने भी खाते हैं ये सब जंगली फल थे, ये सब जंगल में ही होते थे, कंद मूल फल जंगल में ही होते थे। तो फल मूल खा करके काम चल सकता था, अब तो मूल खत्म ही हो गए, پہلے طرح طرح کے زمین میں سے کند نکلتے تھے، اب وہ تو دھیرے دھیرے جنگل سماپت ہو گئے، لیکن سکھدیو جی کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو گھر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ باہر نکل کر کے کیا کریں، کیا کریں باہر نکل کر کے؟ تو کہتے ہیں جو تریوردا اکشر ہے، تریوردا اکشر سمجھ گئے آپ، اوم، کون؟ اوم، اوم کا دھیان کرے تو دھیان کی وہاں ودھی بتائیے، دھیان کی وہاں ودھی بتائیے، گھر سے باہر نکل کر کے اوم کا پرنو کا دھیان کریں۔ اب مہاراج پرنو کا دھیان تو سب کے بس کی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو پھر سگن نراکار کی اپاسنا ہی ہے یہ سب، تو کہتے پھر وراٹ پرش کا دھیان کریں۔ دھارنا کس کی کریں؟ پاتال میں تسہی پاد مولم، پھر پورے وراٹ پرش کا دھیان کریں۔ وراٹ پرش کیا ہے؟ یہ جتنا بھی برہمانڈ ہے سارا کا سارا وراٹ ہی ہے۔ مہاراج پھر بھی بات نہ بنے تو پھر آؤ پھر دھیان کرو بھگوان کرشن کا۔ تو یہ جو دھیان ہے، دھیان ہے، چداکاش واسم ماکاش واسم بھجے ہم، کس کا بھجن کریں؟ جو چداکاش سوروپ ہے، جو چیتنیہ سوروپ ہے اس کا ہم دھیان کریں۔ ہم نے آپ کو بتایا شیو جی کے اوپر بہت بڑا شاستر ہے، شیو سوتر ہے وسوگپت کے، پرتبھگیا درشن ہے، اسپند کاریکا ہے، ان کے اوپر بڑا وستار ہے، اور اس وستار میں وہاں وگیان بھیرو ایک پستک ہے، وگیان بھیرو، وگیان بھیرو میں 112 ودھی دھیان کی بتائی ہیں۔ کتنی ودھی؟ 112 ہے، اور ان 112 ودھیوں میں سے ایک ودھی ہے چداکاش دھارنا، 112 ودھیوں میں سے ایک ودھی ہے چداکاش دھارنا۔ اب یہ چداکاش دھارنا کیا ہے؟ آکاش کو آپ دھارن کر نہیں سکتے، آکاش کو اپنے من میں لا نہیں سکتے، آکاش کو اپنی بدھی میں لا نہیں سکتے، تو چداکاش دھارنا کیا ہے؟ یہی ہے چداکاش واسم آکاش واسم بھجے ہم۔ پھر اپنے آپ کو چیتنیہ سمجھ کر کے، میں چیتنیہ ہوں، چدانند میں چیتنیہ ہوں، میں آکاش سوروپ ویاپک ہوں، تو اپنے اندر ایسی دھارنا کر کے دھیان کیا جاتا ہے۔ دھیان کی انیک ودھیاں ہیں، وہ تو اب وشے نہیں ہے، بھگوان شیو جی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا جو چداکاش سوروپ ہیں اور دگمبر ہیں، تو یہ جو دگمبرتا ہے یہ بھگوان کے سگن اور نرگن دو روپ میں ہے۔ جب ہم بھگوان کے نرگن اتھوا سگن نراکار کی بات کرتے ہیں، سگن نراکار، تو بھگوان دگمبر ہیں۔ کیا ہے بھگوان؟ دگمبر ہیں۔ اور جب ہم بھگوان کے سگن ساکار کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو جو مرضی پہنا دو، پھر چاہے آپ بھسمی رما دو، پھر چاہے آپ گج چرم پہنا دو، پھر چاہے آپ سرپوں کی مالا پہنا دو، جو بھی پہناؤ، لیکن مول روپ میں تو وہ ویاپک ہیں، چیتنیہ سوروپ ہیں اور آکاش کی طرح سے ویاپک ہیں۔ اب آپ دیکھو، بھگوان تو دگمبر ہیں، کیا ہمارا ادھار بنا دگمبر ہوئے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بھی امبر ہیں، ہم نے بھی آورن پہن رکھا ہے، اور مہاراج جیسے وہ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، ریشم کا کیڑا، ریشم کا کیڑا اپنے ہی اندر سے جال بنتا 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 اور خود ہی اس کے کور میں بند ہو جاتا ہے، کوش میں بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہمارے بھی تین کوش ہیں، کوش تو پانچ بتائے ہیں، کیوں کوش کتنے بتائے ہیں؟ پانچ ہیں، پانچ کوش ہیں۔ اگر ان پانچ کوشوں کا، کوش مانے آورن، کوش مانے، کیا ہم بنا پنچ کوشاتیت ہوئے اپنا کلیان کر سکتے ہیں؟ یہ آورن تو ہٹانا ہی ہوگا، آورن تو دور کرنا ہی ہوگا۔ تو جو پنچ آورن ہے، ایتم انمیم آتمانم، یہ جو انمے کوش ہے، اس میں جو آتما آبدھ ہے، اپنے آپ کو ہم نے بندھا ہوا سمجھ رکھا ہے، اپسنکرمیا، اس سے اتکرمن کرنا ہے ہمیں۔ یہ شروتی ہے، ایتم پرانمیم آتمانم उत्संक्रम्य, ये जो प्राणमय कोष है इससे हमें ऊपर उठना है, ये जो मनोमय कोष है इससे हमें ऊपर उठना है, ये जो विज्ञानमय कोष है इससे हमें ऊपर उठना है, और ये जो आनंदमय कोष है, आनंदमय कोष में रहना है, ऊपर उठना है। हाँ, ऊपर उठना है। क्यों? वही संस्कार मात्र का नाम ही आनंदमय कोष है, इससे भी हमें ऊपर उठना है। तो निरावरण का अर्थ है कि कोई आवरण नहीं माया का, माया का कोई, वही चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, कोई आवरण नहीं है माया का, किसी प्रकार का आवरण ही नहीं है। इसलिए भगवान शिव को महेश्वर कहते हैं, महेश्वर, उनको महादेव कहते हैं। फिर बड़ी सुंदर बात कही, निराकार मोंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोते तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। देखो, निराकार शब्द का प्रयोग किया। शिव का क्या आकार है? तवैश्वर्यम यत्ना यदुपरि विरिंचिर हरिरध परिच्छेतुम याता वनल मनल स्कंध वपुष ततो श्रद्धा भक्ति भर गिरिश कृणिभ्याम गिरिशयत स्वयं तस्थेताभ्याम तव किमनुवृत्तिर्न फलति। भगवान का ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए विष्णु और ब्रह्मा में कंपटीशन हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, दोनों में विवाद हो गया, बड़ा विवाद हुआ महाराज। दिव्य सहस्र वर्षों तक विवाद होता रहा विष्णु और ब्रह्मा में। लेकिन जब ये विवाद समझ में नहीं आया, सुलझने नहीं पाया, तो एक दिव्य प्रकाश स्तंभ अनल मनल स्कंध वपुषः, अनल स्कंद, एक दिव्य प्रकाश स्कंद माने स्तंभ, प्रकाश स्तंभ उन दोनों के बीच में प्रकट हो गया। स्कंभम तंब्रूही कतमः स्विदेवसः, विचार करके कहने लगे बताओ ये स्कंभ कौन है, कौन है ये? तवैश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिंचिर हरिरध, हे प्रभो, उसको जानते नहीं थे ये क्या हमारे बीच में प्रकट हो गया। थोड़ा सा तेज कर दो भाई। क्या हमारे बीच में प्रकट हो गया, समझ नहीं आ रहा, ये क्या दिव्य प्रकाश स्तंभ हमारे मध्य में प्रकट हो गया, कौन है ये, इसका पता लगाओ। तो विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और जल में चले गए, और ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश में चले गए, पता लगाने के लिए कि ये ज्योतिष स्तंभ है क्या, ये पता लगाने के लिए ये ज्योतिष स्तंभ क्या है। और महाराज दिव्य सहस्र वर्षों तक वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन पता नहीं लगा। ब्रह्मा को ऊपर से एक फूल आता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा ने कहा रे इसका कहीं अंत है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम इसका अंत कहां है, मैं तो दिव्य सहस्र वर्षों से नीचे ही गिरता हुआ आ रहा हूं, नीचे गिरता हुआ ही आ रहा हूं, मैं अब तक नीचे भी नहीं पहुंच पाया हूं। हाँ हाँ, ये भगवान शिव का ऐश्वर्य है जिसका अंत न विष्णु को प्राप्त हुआ और न ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि अनंत का अंत कभी होता नहीं है, यही है चिदाकाश। इसी को ही चिदाकाश कहते हैं, जो अनंत है, जो अनंत है उसका अंत मिलने वाला नहीं है। अगर अंत मिल गया तो अंत वाला हो गया, तो शांत हो गए महाराज, फिर अनंत कहां हुए? न विष्णु को अंत मिला, न ब्रह्मा को अंत मिला। और अंत का एक और अर्थ है, एक और भी अर्थ है अंत का। देखो भगवद गीता में प्रयोग हुआ है दूसरे अध्याय में, ना भावो ना सतो विद्यते भावः, ना भावो फिर क्या है, उभयोरूपी दृष्टो अंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, अंतः अनयोः अंतः, इन दोनों का अंत, अंत माने रहस्य, द सीक्रेट ऑफ लॉर्ड शिवा, द सीक्रेट ऑफ दैट वेरी प्योर ज्योतिर्लिंगम, उसका जो रहस्य है, उसकी जो वास्तविकता है, यथार्थता है, उसका जो स्वरूप है, वो न तो ब्रह्मा को पता चला और न विष्णु को पता चला। अंत का मतलब एंड भी नहीं है, अंत तो है ही, द एंड वो तो है ही, अंत का अर्थ समाप्ति तो है ही, लेकिन अंत का अर्थ रहस्य भी है। आप क्या कहते हैं, ये हमारे अंतरंग है, अंत अंग अंतरंग है ना, कहते ना ये हमारे अंतरंग है, माने ये ऐसे व्यक्ति जिनके सामने अपना सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं। उभयो, इन दोनों का, किसका, जो असत है उसकी सत्ता नहीं होती, और जो सत्तावान है उसका कभी अभाव नहीं हो पाता। ना भाव विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भाव, उभयोरपि दृष्टो हो अंतः, अनयो हो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने इन दोनों के रहस्य को समझा है, लेकिन महाराज ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक ऐसा रहस्य आ गया, ना तो ब्रह्मा की समझ में वो रहस्य आ रहा है और ना विष्णु की समझ में वो रहस्य आ रहा है, क्योंकि अब तक तो दोनों यही समझ रहे थे कि हम ही संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, हम ही पालन करने वाले हैं और हम ही संहार। अब लेकिन ये जो ज्योतिषम प्रकट हुआ, इसको तो ना विष्णु ने उत्पन्न किया ना ब्रह्मा ने किया, ये तो बड़ा रहस्य हो गया उनके सामने, बहुत भारी रहस्य हो गया। तो उसके रहस्य को पता लगाने लगे महाराज। तो देखो आप इसको आजकल की भाषा में ऐसा कह सकते, कल हमारे चतुर भाई जी बैठे थे हमारे पास, कहने लगे वो विज्ञान बाहर की ओर खोजता है। देखो वो भी एक विज्ञान है और वो बड़े ईमानदार आदमी है। अभी कितने किलोमीटर तक की उन्होंने गुफा बनाई, जमीन के अंदर गए, लेकिन जाने के बाद ईमानदारी से कह दिया कि हमें नहीं मालूम। बड़े ईमानदार है, बड़े सच्चे हैं। अगर हमारे पास, महात्मा के पास कोई मोबाइल होता और सबके पास नहीं होता, तो क्या कहते, मेरा चमत्कार है। हाँ, इन साइंटिस्ट ने उसको चमत्कार नहीं बताया। देखो बड़े ईमानदार हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विष्णु जी तो अंदर ढूंढने लगे और ब्रह्मा जी, एक ज्ञान और एक विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, जो अंदर की ओर जा रहा है वो विज्ञान है। तो एक बाहर की ओर ढूंढने लगे, एक अंदर की ओर ढूंढने लगे। मानो दो आदमी थे, एक संत थे और एक वैज्ञानिक थे। साइंटिस्ट बाहर की ओर ढूंढ रहा है और महात्मा अंदर की ओर ढूंढ रहे हैं। ये वर्तमान की परिभाषा है भाई, ऐसा नहीं इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये नहीं। मैं तो कल बात चली तो फिर दिमाग में आ गई, तो ये बात आपको बता दी। तो ऊपर की ऊपर और देखने लगे तो भी अंत नहीं, और नीचे जाने लगे तो भी अंत नहीं, इसका रहस्य नहीं पता चला। तव ऐश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिंचिर हरिरथ। विष्णु ने कहा मैं संसार का पालन करता हूं, संसार को उत्पन्न करता हूं, संसार का संहार करता हूं, लेकिन ये कौन है जिसको मैंने उत्पन्न ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं संसार को उत्पन्न करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं संहार करता हूं, लेकिन ये मेरी भी समझ में नहीं आया। तो एक नीचे की ओर गए, एक ऊपर की ओर गए, लेकिन अंत का पता नहीं चला, उसके रहस्य का पता नहीं चला। तव ऐश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिंचिर हरिरथ परिच्छेतुम याता वनल मनल स्कंध वपुष। ये जो आपका अनल स्कंद अग्नि ज्योति रूप है, ये दिव्य रूप जो आपने प्रकट किया महाराज, पता नहीं लगा। ततो श्रद्धा भक्ति भर गुरु घृणध्याम गिरीशयत। फिर वो दोनों श्रद्धा संपन्न हो गए। क्या हो गए? श्रद्धा संपन्न हो गए। और जैसे ही श्रद्धा संपन्न हुए तो फिर तो महाराज के आपकी जो भक्ति करते हैं उसका फल नहीं मिलता, अवश्य मिलता है। जैसे ही श्रद्धा संपन्न हुए तो उस ज्योतिर्लिंग में ओम की ध्वनि हुई। क्या ध्वनि हुई? ओम की ध्वनि हुई, ओम की ध्वनि हुई, ओम की ध्वनि। ये ओम ही ज्योतिर्लिंग है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, ये ओम ही ज्योतिर्लिंग है। ये नमः शिवाय ही ओम है। नमः शिवाय ओम है, ज्योतिर्लिंग ओम है, ये अव्यक्त ओम है, ये अनादि ओम है, और ये अनंत अंतरहित जो है ये अनंत ओम है, यही ज्योतिर्लिंग है। ओम की ध्वनि हुई, और जैसे आप भागवत में सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं? प्रहलाद को की कथा सुनी आपने? तो प्रहलाद की कथा में भगवान कहां से आए थे? खंभे में ही आए थे ना। सत्यम विधातुम निज वृत्त्य भाषितम व्याप्तिम च, दो बात के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। एक तो अपने वृत्त यानी अपने सेवक ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए, क्या कि ब्रह्मा जी ने हरिनाक्ष को वरदान दिया था कि तुम्हारी बनाई ही किसी भी सृष्टि में मरने वाला, ये बात सिद्ध करने के लिए कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से, तो बताओ। और